प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए श्रोताओं का जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और इसके साथ मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को निरंतर सुनते और हमारे पास पत्रों को लिखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशायाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में नई बातों को सीख सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं। आप उन सब की भी सुधि लें, अपने वचन के द्वारा प्रत्येक से बोले और बातचीत करें, आज हम सब की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशाया की पुस्तक उसके 6 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे जिसका विषय है भविष्यवाणी के लिए यशाया की बुलाहट। समय और तर्क के आधार पर यशाया की पुस्तक का आरंभ इस अध्याय से ही होता है। यह अध्याय यशाया के जीवन की घटनाओं का वर्णन करके उसे भविष्यवाणी का पद प्रदान करता है। इससे पूर्व हमारे पास उसके जीवन और परमेश्वर के साथ उसके संबंधों की कोई भी जानकारी नहीं है। उसकी सेवा का आरंभ राजा उज्जियाह के मरने पर हुआ था। यशाया को परमेश्वर का दर्शन, हम इसे पद 1-4 में देखते हैं। उसकी महिमा, उसकी पवित्रता का दर्शन और स्थान एवं समय का उल्लेख। अब समय, स्थान और व्यक्ति का उल्लेख को देखें। आइए हम पढ़ें यशाया 6 अध्याय उसके 1 पद, जहां पर लिखा हुआ है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यशाया इस अध्याय का आरंभ बड़े ही दुखद दृश्य के साथ करता है। राजा उज्जियाह की मृत्यु हो गई है। राजा उज्जियाह एक भला राजा था। अधिकांश विचारकों का मानना है कि वह दक्षिणी राज्य यहूदा का अंतिम अच्छा राजा था। उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर की महिमा वहां दिखाई नहीं दी। जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं यह विश्वास के साथ नहीं कह सकता, उज्जियाह ने पलिस्तियों, अरबों और अमोनियों को अपने अधीन कर लिया था। उसने 52 वर्ष राज्य किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल को बहुत भौतिक आशीषें मिली। एफ डेलिट्ज का कहना है, इसराइल की राष्ट्रीय गरिमा राजा उज्जियाह के साथ समाप्त हो गई और फिर आज तक नहीं देखी गई। मैं इस कथन का हार्दिक समर्थन करता हूं। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। यशायाह सोच रहा था, उज्जियाह एक अच्छा राजा था, उसके मर जाने पर अब राष्ट्र के लिए आशा नहीं है, इसराइल बंदी बना लिया जाएगा, समृद्धि रुक जाएगी, मंदी आ जाएगी और सूखा पड़ेगा। इसी विचार के साथ यशायाह वही करता है जो अन्य कोई भी करेगा। वह मंदिर में जाता है, वह उस स्थान में जाता है जहां वह परमेश्वर की उपस्थिति में हो। भजन संहिता 29 उसके 9 पद में लिखा है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। मंदिर में जाकर यशायाह को यह बोध होता है कि जो वास्तव में राजा है वह तो जीवित है। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। मेरे मित्रों, यशायाह हमें पहले ही चेतावनी दे चुका है कि हम मनुष्य पर भरोसा न करें। मनुष्य की सांस तो उसकी नाक में होती है। मनुष्य सांस छोड़ने के बाद नहीं जानता कि वह सांस लेने योग्य रहेगा या नहीं। मनुष्य पलक झपकते ही दिल के दौरे से मर सकता है। अतः मनुष्य पर भरोसा न करें। बूढ़ा राजा उज्जियाह मर गया है और सिंहासन पर अंधकार छाया हुआ है, परंतु इस सांसारिक सिंहासन के ऊपर एक स्वर्गीय सिंहासन है। यशायाह परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखता है। आज परमेश्वर के जनों को भी ऐसा ही दर्शन पाना आवश्यक है। मैं निराशा का कोई कारण नहीं देखता हूं। विश्व में इतिहास में यह एक महान दिन है। मैं तो अन्य किसी युग की अपेक्षा इस युग में वास करना चाहूंगा। किसी ने कहा, ओह संसार की दुर्दशा तो देखो, हमारे नगरों की दयनीय दशा पर तो ध्यान करो। प्रभु ने तो कह ही दिया था कि यह समय आएगा। गेहूं के साथ कांटे तो उगेंगे ही, वह तो दोनों को ही एक साथ उगने देगा। मेरा काम तो परमेश्वर के वचन का बीज बोना है। मैं जानता हूं कि फसल तो तैयार होगी और हो भी रही है, इसमें दो राय नहीं है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर उसे संभाल लेगा। हम अपना काम करने से न चूकें। परमेश्वर के वचन का बीज भूखे मन से बोते रहें और बोते चले जाएं। आज का दिन महान है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन अन्य किसी भी समय की तुलना में आज सबसे अधिक प्रसारित किया जा रहा है। मेरा रेडियो कार्यक्रम आधे घंटे में वचन का जो प्रसारण कर रहा है वह मेरे मंच प्रचार के वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। मैं असंख्य जनों में पहुंच पा रहा हूं। संदेश संपूर्ण विश्व में सुनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि संसार की परिस्थितियां संकट का संदेश दे रही हैं। कांटे भी खूब उग रहे हैं, परंतु गेहूं भी बहुत अच्छा उग रहा है। आज परमेश्वर के वचन को बोना बड़े उत्साह की बात है। मेरे मित्रों, मंदिर में यशायाह ने देखा कि परमेश्वर अब भी मंदिर में है। हमें बोध होना है कि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है। वह प्रार्थनाएं सुनता है, उत्तर देता है। वह आज भी चमत्कार करता है। मंदिर में यशायाह ने एक बात और देखी। परमेश्वर बहुत ही ऊंचे पर विराजमान है और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा हुआ है। हमें परमेश्वर के बारे में यह एक और बात देखना है। परमेश्वर बहुत ऊंचे पर विराजमान रहता है और वह पाप से समझौता नहीं करेगा। यशायाह 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6-6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। परमेश्वर के सिंहासन के निकट साराप उपस्थित रहते हैं। धर्मशास्त्र में व्यक्त इन बुद्धिजीवों के संदर्भों में यह एक उल्लेख है। उनके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। सराप का अर्थ है जलना। यह शब्द पाप बलि और दंड के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। स्पष्ट है कि सराप करूबों की तुलना में भिन्न थे। सराप पाप को खोजते हैं और करूब परमेश्वर की पवित्रता को संभालते हैं। सराप कहीं भी मनमोहक सुगंध और ग्रहण योग्य मधुर बलि के संबंध में नहीं दर्शाए गए हैं, क्योंकि ये बलियां प्रभु यीशु का प्रतीक थी। सराप सक्रिय हैं और करूब निष्क्रिय। यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में दोनों का उल्लेख हम देखते हैं कि वे जीवित प्राणी हैं। यशाया की पुस्तक में सराप परमेश्वर की पवित्रता को संभाल रहे हैं, वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है। मेरे मित्रों, परमेश्वर बुराई को सहन नहीं करेगा। मैं इस बात के लिए उसका आभारी हूं। वह आपके जीवन में उपस्थित बुराई से समझौता नहीं करेगा और नहीं कर सकता है, क्योंकि बुराई और पाप के कारण संसार में दुखों का आगमन हुआ है। पाप ही के कारण बाल पकते हैं, कदम लड़खड़ाते हैं और कंधे झुक जाते हैं। पाप ही परिवारों को तोड़ता है और कब्रों को भरता है। मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर इससे समझौता नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि वह पाप से घृणा करता है और उसे नष्ट करना चाहता है, संसार से उसे मिटा देना चाहता है। आज परमेश्वर पाप के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। वह उससे न तो समझौता करता है और न डरता है और न विचलित होता है। मेरे मित्रों, वह उसके समर्पण के सफेद झंडे को स्वीकार नहीं करेगा। वह इस जगत से पाप का नाम मिटा देना चाहता है। परमेश्वर यही कहता है, वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे उसके समक्ष घुटने टेकने होंगे। सिंहासन पर परमेश्वर को देखकर यशाया मुंह के बल गिर पड़ा। ओह, कलीसिया को परमेश्वर के दर्शन की एक बार फिर कैसी घोर आवश्यकता है। उसके प्रेम की ही नहीं, उसकी पवित्रता और धार्मिकता के दर्शन की, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वह पाप का दंड देता है और उसे इसका पछतावा नहीं होता है। परमेश्वर पाप से क्रोधित है और पाप करने वालों को दंड देगा। उसने कहा है कि वह दंड देगा। वह यह कहता है कि वह आपका मित्र है और आपको बचाना चाहता है, परंतु आपको उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। आपको उसके साथ रहना होगा। आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उस पर निर्भर करना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे मित्रों, यशाया को मंदिर में परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ कि वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया था। उसने वहां सराप भी देखे और वे कहते थे, हम यशाया 6 में और 3 पद में पढ़ते हैं, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यह पद हमारे प्रभु परमेश्वर की पवित्रता और महिमा का वर्णन करता है। वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है। यदि हमें उसका ऐसा दर्शन प्राप्त हो तो हम अपना घटिया जीवन त्याग देंगे। इससे हम प्रभु यीशु को एक आम परिचित मनुष्य न समझेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु हमारा मित्र है और हम जैसे चाहें वैसी ही बातें उसके साथ कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे भी प्रवेश नहीं कर सकते। वह अनुमति नहीं देगा। आपको प्रभु यीशु के द्वारा उसके पास आना है। यही एकमात्र द्वार है। आप अपने ऊपर निर्भर करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। आप परमेश्वर की उपस्थिति में केवल इसलिए आ पाते हैं कि आप प्रभु यीशु में हैं। प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट कहा है, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं आ सकता। यदि आप उसकी संतान हैं, तो आपको अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का हियाव है। इसके अतिरिक्त उसके पास आने का अन्य कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि जो कोई उसके पास आए वह पवित्र हो। और आप सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और तब परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यशाया 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। पुकारने वाले के शब्द से, यह शब्द सरापों का था जो परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा कर रहे थे। यशाया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए हम पढ़ें यशाया 6 अध्याय उसका 5 पद। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्रियो, यशाया इस अनुभव के पहले से ही परमेश्वर का जन था, परंतु इस अनुभव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस अनुभव की प्रतिक्रिया के कारण उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वह परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को वैसा ही देख पाया जैसा वह वास्तव में था। इस अनुभव ने उस पर उसकी वास्तविक दशा को प्रकट कर दी। परमेश्वर का दर्शन पाकर अब वह अपने आप को देख पाने में सफल हुआ। आज हम में से अनेकों की समस्या यह है कि हम परमेश्वर के वचन की ज्योति में नहीं चलते हैं। यदि हम वचन की ज्योति में चलें, तो हम अपने आप को भली भांति देख पाएंगे। यूहन्ना अपनी प्रथम पत्री के पहले अध्याय में यही कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 पद में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, यदि हम परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलें, तो हमें भी वही दिखाई देगा जो यशाया ने देखा, कि हम नाश हुए और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं। मेरे मित्रों, आपने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। यदि आप यह सोचें कि आपके पास में योग्यता है या आपके पास कर्म है या आपको परमेश्वर पर अधिकार प्राप्त है, अय्यूब का अनुभव भी यशाया के समान ही था। उसकी प्रतिक्रिया थी, मुझे अपने आप से घृणा होती है। वह आत्मा अभिमानी मनुष्य था। वह फाड़ खाने वाले मित्रों के सामने अपनी धार्मिकता, अपनी सत्यनिष्ठा को सिद्ध कर चुका था। उन्होंने कहा कि वह एक घृणित पापी है, परंतु उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जितना जानता हूं उसके अनुसार तो मैं धर्मी ही हूं। अपने विचार में तो वह सही था और अपने मित्रों से विवाद में जीत भी गया, परंतु वह सिद्ध नहीं था। मेरे प्रियो, जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में आया, तो वह अपनी धार्मिकता के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। उसे जब अपनी वास्तविक दशा का बोध हुआ, तो उसने कहा, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलकर आप देख पाते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं, और आपको बोध होगा कि परमेश्वर की संतान होने पर भी आपको शुद्ध होने के लिए परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु के लहू की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप यह भी देखेंगे कि अन्य मनुष्यों की प्रतिक्रिया भी ऐसी ही है। जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 पद में यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। परमेश्वर को देखकर दानियल कहता है 10:8 में, तब मैं अकेला रहकर यह दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तर्शीस के शाऊल का भी यही अनुभव था। वह आगे चलकर पौलुस कहलाया। प्रभु से भेंट करने के बाद वह स्वयं को एक आत्माभिमानी फरीसी नहीं मानता था। वह देख पाया कि वह एक भटका हुआ पापी है जिसे उद्धार की आवश्यकता है। अतः वह फिलिपियों की पत्री 3:7 में कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मेरे मित्रों, यदि आज आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप कौन हैं। अभी इस वक्त आप जो कुछ भी क्यों ना हो, परंतु वचन के प्रकाशन में अपने आप को देखिए। वचन जो एक आईने के समान आपको दिखा देगा कि आप कौन हैं। और जिन लोगों ने भी अपने आप को परमेश्वर की निकटता में लाया, उन्होंने अपने आप को पहचान लिया कि वे क्या हैं। यशाया 6:6 में लिखा है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। ध्यान दीजिए, अंगारा वेदी पर से उठाया, जहां पाप का समाधान होता था। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में हम प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी को देखेंगे, परंतु मसीह यीशु का देह धारण हमें उद्धार नहीं दिलाता है। क्रूस पर उसकी मृत्यु हमारा उद्धार संपन्न करती है। यह अंगारा जो वेदी से उठाया गया था, वह प्रभु यीशु की मृत्यु का द्योतक है, और यशाया को इसकी आवश्यकता थी। यह अंगार प्रभु यीशु के लहू का प्रतीक है, जो हमें सब पापों से शुद्ध करता रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक अवसर है कि हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में जांचें, अपने आप को देखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यदि आज हमारा जीवन पाप में डूबा हुआ है, तो आइए आज हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा पाप धुल जाए और हम भी परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाएं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही यशायाह के जीवन से अपने जीवन में भी लाभ प्राप्त किया है, और आप भी एक सही निर्णय अपने जीवन में लेंगे। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे बचाएगा रक्षक बनकर प्राण समा